الحمد لله وكفى بالسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا دعاؤں کے ساتھ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں، جو کہ نیند کا نظام سلیپ مینجمنٹ پر مشتمل ہے، کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، امور خانداری میں حسن انتظام. یہ سلسلہ دروس ہے جو ہمارے حضرت عبدالفقار احمد بندی رحمت اللہ علیہ نے ایک رمضان المبارک کے اعتکاف کے پروگرام کے دوران کیا تھا، اور یہ خواتین کی طرف مخاطب تھے اس سلسلہ دروس میں. تو ان میں نیند کا نظام کا موضوع جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے. تو یہ ہم نے شاید 2 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس میں کچھ تبدیلی باتیں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھیں، اور آج بھی ہم کچھ تمہیدی باتیں ہی پڑھ رہے ہیں. تو زندگی کے مختلف سائیکلز، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ سائیکلز کے اندر، یعنی ادوار کے اندر گزر رہی ہوتی ہے. یہ جو ادوار کا لفظ ہے، یہ خود جو ہے وہ دور سے نکلا ہے، دور کی جمع ادوار ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا جی، ہم اپنے زندگی کے ادوار میں سے گزر رہے ہیں، اردو زبان کا لفظ ہے، تھوڑا سا اب کم استعمال ہوتا ہوگا، لیکن یہ ادوار جو ہے یہ دور سے نکلا. اور دور کیا ہے؟ یہ دور جو ہے وہ گھومنے والی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دن رات کا سائیکل یہ بھی گھومتا رہتا ہے، موسم کا سائیکل یہ بھی گھومتا رہتا ہے، چاند کا سائیکل یہ بھی گھومتا رہتا ہے. تو ہماری زندگی گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے، اس گھومنے کے دوران ہی جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہمیں اس دور کو جو ہے وہ برا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پروردگار نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے. اس میں سے ہم نکلیں گے کب؟ جب ہماری موت آئے گی. ٹھیک ہے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اگلے جہان میں چلے جائیں گے، تب ہم اس سائیکل کے اندر سے ہم نکل جائیں گے، یعنی عالم برزخ میں جب جائیں گے، جس کو قبر بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر دن رات کا سائیکل نہیں ہوگا، وہاں پر موسموں کا سائیکل نہیں ہوگا، اور وہاں پر چاند کا سائیکل نہیں ہوگا. ہے نا، قبر سے جو ہے وہ چاند نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور نہ سردی گرمی کا پتا چل رہا ہوگا. وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی نظام بنایا ہوا ہے. تو وہاں پر پھر ہم اس والے دور سے نکل کر کے اگلے والے دور میں پہنچ جائیں گے، اور اللہ عالم اس والے دور کے اندر کیا چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. تو دور تو پھر ریپیٹیشنز کو ہی کہتے ہیں نا، سائیکل کو ہی کہتے ہیں. تو قبر میں جا کر کیا سائیکل چل رہے ہوں گے؟ اللہ کرے ہم سب کے لیے اچھے سائیکل چل رہے ہیں وہاں پر جانے کے بعد. تو بہرحال یہ تو ایک تمہیدی ڈسکشن ہو گئی سلیپ مینجمنٹ کے اندر. پھر اس کے بعد آج جو ڈسکشن شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 156 کتاب کے اوپر، تو اس میں ہے انسان کی عمر میں 7 سال کے سائیکلز. ٹھیک ہے، 7 سال کے سائیکلز، تو اس کو انگریزی میں جو ہے وہ 7 ایئر سائیکلز آف لائف بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 7 ایئر سائیکلز آف لائف، ہماری زندگی جو ہے نا وہ 7 ایئر سائیکلز میں چل رہی ہے. اس کے لیے زیادہ میرے ذاتی طور پر، میرے ذاتی نظریے میں جو لفظ جو ہے انگریزی کا اس کو زیادہ بہتر ڈسکرائب کر سکتا ہے وہ ہے سٹیجز. ٹھیک ہے، سٹیجز آف لائف. تو 7 ایئر سٹیجز آف لائف کیا مطلب؟ کہ ہمارے لائف کے اندر سٹیجز ہیں، یعنی درجے ہیں، اردو میں اس کو درجات کہتے ہیں، سٹیپس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سٹیپس. दरजा जो है ये सीढ़ी को कहते हैं ना अरबी जुबान में, सीढ़ी को। तो सीढ़ी जो होती है उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो गोया के जिंदगी की सीढ़ी, तो उसमें पहला स्टेप भी 7 साल का होता है, फिर दूसरा स्टेप 7 साल का होता है, तीसरा स्टेप भी 7 साल का होता है, और इस तरीके से कम अज कम 10 स्टेप्स बनते हैं। कम अज कम से मुराद ये कि उमूमी तौर पर इंसान की जिंदगी जो होती है वो 10 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो हजरत ने इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बयान किया है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इसके अंदर माशाल्लाह हमारे दीन से भी इसकी दलील मिलती है कि भाई हाँ वाकई इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो कुछ गैरों ने भी रिसर्च करी है, यानी नॉन मुस्लिम्स ने भी इसके ऊपर रिसर्च करी है, और वो भी इसी 7 ईयर साइकिल्स के ही नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की एक कॉमन किस्म की रिसर्च आप कह सकते हैं, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रिसर्च। तो इसके तहत हजरत ने फरमाया कि हमारी उम्र को अगर आप देखें तो उम्र भी साइकिल्स में गुजर रही है, जिस तरह से रोजाना का दिन साइकिल में, दिन रात की साइकिल, वो दिन दिन और रात की साइकिल में गुजर रहा है, साल जो है वो भी जो है मौसमों के साइकिल में गुजर रहा है, महीना चांद के साइकिल में गुजर रहा है, उसी तरह हमारी पूरी जिंदगी भी साइकिल में गुजर रही है। तो वो कैसे कि मसलन इंसान की पूरी जिंदगी में 7 साल का एक साइकिल है, जिसके तहत उसके जिस्म में तब्दीलियां आती चली जाती हैं, ठीक है। तो गोया के 7 ईयर्स में एक खास किस्म की तब्दीली आती है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 7 ईयर के साइकिल में आप जाते हैं तो उसमें एक खास किस्म की तब्दीलियां आती हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है। और जाहिर है जब जिस्म में तब्दीलियां आती हैं तो जिस्म का जो असर होता है ना वो इंसान की रूह के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। रूह इस दुनिया के अंदर इंसान के जिस्म के अंदर ही रहती है ना, सिवाय जब वो सोती है तो फिर वो रूह का एक पोर्शन, रूह का एक हिस्सा जो है वो उसके जिस्म में से निकल जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही वो जागता है तो वो जो निकला हुआ हिस्सा होता है वो भी जिस्म के अंदर वापस आ जाता है, पूरी की पूरी रूह सोने की हालत में नहीं निकलती, ठीक है, पूरी की पूरी रूह नहीं निकलती, क्योंकि हमारी सांस चल रही होती है ना, तो पूरी रूह निकल जाए तो फिर तो सांस ही बंद हो जाए। तो जो भी देखो रूह निकलती है वो फिर जागते ही फौरन वापस आ जाती है, लेकिन अदरवाइज तो हमारा जिस्म ही रूह को लिए लिए जिंदगी में फिरता है। तो जाहिर है जिस्म की सोहबत में रूह रहती है तो रूह के ऊपर जिस्म की सोहबत का असर होता है, ठीक है, क्योंकि जिस्म उमूमी तौर पर हमारा रूह से ज्यादा मजबूत बन जाता है। तो जाहिर जो मजबूत होगा वही कमजोर के ऊपर अपना असर डालेगा, अगर रूह जो है वो ज्यादा मजबूत बना लें हम तो फिर रूह जिस्म के ऊपर असर डालेगी। खैर असर तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो अब जो है वो जिस्म में जो तब्दीली आती है उसका पहला साइकिल या पहला स्टेज, तो हजरत ने फरमाया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जिस्म में कुव्वत पूरी नहीं होती, वो अपना सर भी सीधा नहीं कर सकता, वो लेटा हुआ होता है, लेटा होता है तो उठकर बैठ भी नहीं सकता, ठीक है, यानी कंप्लीट डिपेंडेंसी की हालत में वो होता है, कंप्लीट डिपेंडेंसी, ठीक है, वो खुद हिलजुल भी नहीं सकता ना, उठ के बैठ भी नहीं सकता। हमारे हजरत और मशाइख फरमाते हैं कि बच्चे को कोई ताकत नहीं होती, कुछ करना नहीं आता सिवाय रोने के, रोने का एक फन है जो कि अल्लाह ताला उसको दे कर भेजते हैं, और वो ऐसा फन है, ऐसा हुनर है उसके पास कि बस उसके जरिए से अल्लाह ताला उसके सारे काम करवा देते हैं। जहां उसको कोई तकलीफ होती है रोता है, अम्मा अब्बा मुतवज्जो होते हैं, उसकी मुश्किल को दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, भूख लगती है रोता है, प्यास लगती है रोता है, ठीक है, उसका मसला हल हो जाता है। तो हमारे मशायख फरमाते हैं कि ए इंसान, जब से तूने रोना छोड़ दिया तो उसके बाद से तेरे काम भी अटकना शुरू हो गए। तो भाई तुम फिर से रोना शुरू कर दो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। तो अब इसका शैतान ने हमें ये एक्सप्लेनेशन दी कि तुम लोगों के सामने रोते रहो तो तुम्हारे काम बनते रहेंगे, है ना। ये शैतान की, देखें अब मशायख कोई बात करते हैं तो होती तो वो फायदे की चीज है, लेकिन शैतान फिर उसको नुकसान की चीज भी बनाने की कोशिश करता रहता है। मशाइख ने कहा कि ए इंसान, जब से तूने रोना छोड़ा उस वक्त से तेरे काम अटकने शुरू हो गए। इधर से शैतान ने अपनी हरकत करी फिर से कि अच्छा, सही तो कह रहे हैं, तो तुम जाकर के लोगों के सामने अपना दुखड़ा रोते रहो, रोती रहो, तो तुम्हारे काम बनते रहेंगे। हालांकि मशाइख का मतलब ये था कि अल्लाह के सामने रोना तुमने जब से छोड़ा है, ठीक है, तो अल्लाह के सामने रो जा करके, यानी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाओ, अल्लाह ताला से मांगो, ठीक है, और रो रो के मांगो, क्योंकि भाई तुम कमजोर हो,
अच्छा
अल्लाह ताला ताकतवर है, पावरफुल है, अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है फिर रो रो के मांगना चाहिए। बहरहाल तो बात उम्मीद है कि बस काफी समझ में आ गई होगी। तो अल्लाह के सामने हमने सारा वक्त चलते फिरते, खाली मुसल्ले के ऊपर रोने की जरूरत नहीं है, मुसल्ले के ऊपर रोना भी काफी नहीं है, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला के साथ मांगते रहना है और कमजोर बन करके मांगना। रोने का मतलब ये नहीं होता दहाड़ने दहाड़े मारना शुरू कर देना, ये मतलब नहीं है रोने का, बल्कि आजिजी और इनकेसारी के साथ अल्लाह से मांगना, इसी को रोना कहते हैं अल्लाह के सामने, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के ऊपर। तो फिर कुछ महीनों के बाद वो बैठना सीखता है, यानी उसकी डिपेंडेंसी जो है ना वो कम होनी शुरू होती है, ठीक है, कि अब वो बैठना सीखता है। तो अपना सर संभालना सीखता है, सर को स्ट्रेट रखना, पीठ को, कमर को स्ट्रेट रखना, वरना उसके बगैर वो बैठ भी नहीं सकता। फिर खड़ा होना सीखता है, यानी टांगों को स्ट्रेट रखना सीखता है, और उसके बाद फिर वो चलना सीखता है, ठीक है। तो फिर 7 साल की उम्र में उस बच्चे के दिमाग की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है, दिमाग की ग्रोथ, ठीक है। तो अब ये दिमाग की बात हो रही है तो जाहिर फिजिकल बॉडी से ताल्लुक होता है दिमाग का, तो फिर ये ज्यादातर जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स का एरिया होता है, उन्होंने इस पर रिसर्च करी होगी और उस नतीजे पहुंचे कि बच्चे का दिमाग की ग्रोथ भी जो है ना वो भी 7 ईयर्स में जाकर के मुकम्मल हो जाती है। तो चुनाचे शरीयत ने कहा कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए, उसे नमाज का हुक्म दिया जाए और उसका बिस्तर जुदा कर दिया जाए, ठीक है, यानी दूसरे बच्चों के साथ अब एक ही बिस्तर के अंदर, एक ही कंबल, एक ही कोल्ड के अंदर अब उसको ना सुलाया जाए, बस उसको, बल्कि उसको एक अलग से, एक इंडिविजुअल पेशेंट का बिस्तर दे दिया जाए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब नमाज सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि इससे पहले जो है वो आप उसको कुछ भी ना सिखाएं, बल्कि नमाज सिखाने में जैसे कि फरमाया कि उसको नमाज का कहना शुरू करो, ठीक है, उससे पहले जो है वो अपनी मोटिवेशन के ऊपर नमाज पढ़ेगा, यानी आपको देखेगा नमाज पढ़ते हुए तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिन घरों के अंदर नमाज का माहौल होता है उन घरों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने जितना उनको समझ में आता है उतना वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट जो है वो सजदे में चले जाते हैं आराम से, और कभी जल्दी जल्दी से कुछ कर लेते हैं इस तरह से, तो वो देख देख करके तो वो खुद से सीखता है। लेकिन अब जो है ना वो नमाज को प्रॉपर सिखा भी दो और उसको कहना भी शुरू कर दो, ठीक है, तो कम से कम जो है वो जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज जो है वो अपने साथ खड़ा करके पढ़वा लें, और फजर की नमाज में भी उसको कम से कम जैसे कह दिया, ठीक है। अब वो अगर नहीं उठ पा रहा बच्चा तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी उसके ऊपर फर्ज नहीं है, अभी कहने का हुक्म है ना, तो कहना तो फिर सोते हुए बच्चे को कहने से भी वो हुक्म पूरा हो जाता है, यानी उठाने की नीयत से कह दिया, और अगर वो उठ गया तो उठ गया, या उठ गई तो उठ गई और उसने नमाज पढ़ ली, लेकिन उसके ऊपर टॉर्चर करने की अभी जरूरत नहीं है, उसको कहने का हुक्म है। फिर उसके बाद 10 साल का भी आपने सुना ही होगा कि 10 साल जो है फिर उसको, या अगर नहीं पढ़े तो फिर डांटना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे नमाजी घराने होते हैं तो उनके अंदर फिर ये बन जाते हैं ना बच्चे का। की आदत बन जाती है 10 साल तक, उसको डांटने वांटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अनलेस कि आपने कोई ऐसा माहौल भी साइड में बनाया हुआ हो कि जो कि उसको नमाज से रोकता हो, फिर जो है वो डांटने की नौबत आएगी, वरना डांटने की नौबत आती ही नहीं है। तो 10 साल की उम्र में उसको कहा जाए जरा उसके साथ, और फिर 12 साल की उम्र में सख्ती की जाए। अच्छा, अगर ना पढ़े तो ये जो है ना 7 साल का एक साइकिल है, जिसमें उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो फिर इनडिपेंडेंसी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये साइकिल खत्म हो गया, 0 to 7 years का साइकिल। फिर उसके बाद दूसरा साइकिल शुरू होता है, तो वो 7 to 14 years, 7 से लेकर 14 साल का साइकिल। फरमाते हैं कि जब ये एक साइकिल खत्म हुआ और बच्चे की नमाज शुरू हो गई, तो फिर दूसरा साइकिल खत्म होता है और इसमें बच्चा 14 साल का हो जाता है, यानी अब ये मजीद 7 साल गुजरे उसके। तो इन 7 सालों के अंदर जो है ना, वो क्या होता है कि बच्चा, हजरत ने फरमाया कि 14 साल की उम्र में बच्चा बालिग हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली 14 साल की उम्र में जरूरी नहीं है, कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा पहले भी बालिग हो जाता है, और कुछ जो है वो इस, यानी इस पीरियड के अंदर जो है वो बच्चे बालिग होते हैं, फिजिकली बालिग होते हैं, और एक नई जिंदगी की तकदीर शुरू हो जाती है। ये बलूगत की जिंदगी है, और शरीयत के अंदर जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही बच्चा बालिग होता है, होती है, तो अब उसके ऊपर शरीयत के अहकामात जो है वो फर्ज हो जाते हैं। ठीक है। और फर्ज का मतलब ये होता है कि करोगे तो बहुत सवाब मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो पिटाई होगी, ठीक है, यानी सजा मिलेगी। ये फर्ज की डेफिनेशन कि करोगे तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सवाब जो है वो फर्ज को करने पर मिलता है, नफिल को करने के ऊपर नहीं मिलता, फर्ज को करने पर मिलता है। नफिल को करने पर अगर 1 time सवाब मिल रहा है, तो फर्ज को करने के ऊपर 70 गुना सवाब मिलता है, नफिल एक नफिल के multiply by 70। ठीक है। तो लेकिन अगर नहीं करना, नहीं किया, तो फिर सजा मिलती है ना किसी शक्ल के अंदर, फौरन भी मिल रही होती है, फौरन से सजा मिल रही होती है, जो दिल के ऊपर स्याह धब्बा का पड़ जाना, धब्बे का पड़ जाना है ना, ये सजा होती है। इससे जो है वो इंसान की रूहानी ताकत जो होती है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। और फिर उसके लिए दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, और फिर उसका दूसरा इफेक्ट उसकी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि कभी जो है वो अल्लाह ताला नाराज होकर के उसको किसी मुसीबत में भी मुबतला कर देते हैं। तो ये फराइज को छोड़ने की सजा होती है। फर्ज जो है वो सिर्फ नमाज नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, बल्कि फर्ज जो है वो रोजा भी है, फर्ज जो है वो जकात भी है, फर्ज जो है वो हज भी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी सूरत हाल के ऊपर। तो अब सारा साल तो नहीं रोजा रखना, और सारा साल तो नहीं जकात देते रहना, ठीक है ना, वो तो जब रमजान का महीना आएगा तब रोजा फर्ज होगा, और 1 साल अगर निसाब के ऊपर गुजरेगा तब जकात फर्ज होगी। उसी तरीके से जब इतना माल दौलत जमा हो गया कि ये जो है वो हज पे जा सकता है, तो फिर इसके ऊपर हज फर्ज हो। तो हज की फर्जियत और इन सब चीज की फर्जियत होती है, लेकिन एक और फर्ज जो है वो क्या कि इसके अलावा भी जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, तो उनको ना तोड़ना भी फर्ज है। ठीक है। यानी गुनाह ना करना, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना, क्या कहते हैं उसको, गुनाह। ठीक है। तो गुनाह ना करना ये भी फर्ज है। क्या मतलब, झूठ ना बोलना ये भी फर्ज है। ठीक है। गइबत ना करना ये भी फर्ज है, धोखा ना देना ये भी फर्ज है। तो अब ये सारे जो है ना वो उसके ऊपर फर्ज हो गए, बच्चे के ऊपर, जैसे ही वो बालिग हो गया, अब जो है वो उसका नामे अमाल के अंदर नेकियां भी लिखी जा रही हैं और गुनाह भी लिखे जा रहे हैं। ये बलूगत की जिंदगी। ठीक है। ये होती है बलूगत की जिंदगी। अच्छा, कुछ बच्चे माशाल्लाह जो नेकी के माहौल में खाली नहीं रहते, बल्कि बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम और तरबियत के माहौल में भी रहते, ठीक है, यानी बाकायदा वो ये बातें सुन भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, बाकायदा क्लासेस भी हो रही होती हैं जिनके अंदर ये बातें बताई जा रही होती हैं, बयानात भी अपने वालिदैन के साथ अटेंड कर रहे होते हैं जिनमें ये सारी बातें बताई जा रही होती हैं। तो अब ऐसे बच्चे जो है ना, इवन 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में भी फिर वो सवाल करना शुरू करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो एक बहुत माशाल्लाह अच्छा सवाल जो बच्चे करते हैं वो ये कि अच्छा अभी तो हम बालिग नहीं हुए, माँ बाप ने उनको बता दिया होता है ना कि अभी अभी आप बालिग नहीं हुए हैं, ठीक है, जब होंगे तो हम आपको सब बताएंगे कि जब थोड़े इतने बड़े हो जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि बालक होने का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी उनको पता तो चल जाता है, इतनी ऐसा तो नहीं होता कि बच्चों को ये बात समझ में ना आ रही हो, उनको तो समझ में आ रहा होता है कि हाँ भाई इसका मतलब ये कि अभी हम बालक नहीं हुए। तो अभी हम बालक नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हम अगर गुनाह करेंगे तो नामे अमाल के अंदर हमारा गुनाह नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन बच्चा इस काबिल हो जाता है निकालने का। और दूसरा कंक्लूजन क्या कि इसका मतलब ये भी है कि अगर हम नेकी करेंगे तो नेकी का सवाब भी हमारे नामा अमाल के अंदर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब उसके जहन में एक सवाल आता है, वो क्या कि अगर गुनाह करने पर हमारा गुनाह लिखा नहीं जा रहा नामा अमाल के अंदर और हमें सजा नहीं मिल रही तो फिर चलो कर लेते हैं। यानी झूठ, आमतौर पर बच्चों का क्या गुनाह होता है, ये झूठ बोलना ही होता है, ठीक है। तो चलो झूठ बोल लेते हैं, गुनाह होना तो मिलना नहीं है, ठीक है। और जहां पर नेकी की बात आई, सवाब की बात आई, तो सवाब तो मिलना नहीं है, नामे अमाल के अंदर तो कुछ लिखा जाना नहीं है, तो फिर फायदा क्या नेकी का काम करने का, ठीक है। तो अम्मी की मदद करने का, सच बोलने का, अच्छा काम करने का फायदा क्या जब कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसके जहन में ये बात आई ना रही हो, बेशक वो अभी बालक नहीं हुआ लेकिन उसके जहन में तो ये बात आती है ना, आ सकती है बल्कि आती है। तो क्या करें अब, क्या ये बयान में ले जाना छोड़ दें बच्चों को, क्लास में बिठाना छोड़ दें जिस तरह पहले जो दुनियादार मुसलमान होते हैं उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मजलिस में लेके आना, बयान सुनाना। हमारी वालदा कहा करती थी कि जो शियाओं के बच्चे होते हैं ना, शियाओं के ना, सहाबा के दुश्मन और कुरान के मुनकर, ठीक है, वो ये डेफिनेशन है शिया की ना, सहाबा के दुश्मन और कुरान के मुनकर, ठीक है, और तकिया करने वाले यानी झूठ झूठ बोलने वाले, तकिया ये उनका दीन, सन, ठीक है। आजकल तो उनको बहुत बड़ा हीरो बनाया जा रहे हैं ना, उनके जो दोस्त हैं उनको बहुत बड़ा हीरो बनवा रहे हैं और हम बेवकूफ बने चले जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हमें अकल सलीम अता फरमाए। लेकिन तो ये इसलिए बोल दिया क्योंकि ऐसी बात सुन करके आपके जहन में कुछ भलाई ना आ जाए उनके दीन के बारे में, ठीक है। इस वजह से बात मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दी है। तो हमारी वालदा मरहूमा कहा करती थी कि शियाओं के जो बच्चे होते हैं ना उनको अपने दीन का बड़ा पता होता है, जो भी उनका दीन है उसका उनको पता बड़ा होता है। क्यों पता होता है, इसलिए कि बचपन से ही उनके माँ बाप उनको पकड़ करके मजलिस में लेके जा रहे होते हैं, बचपन से ही बच्चों को लेकर के मजलिस में जा रहे होते हैं। तो अब मजलिस के अंदर जो उनका दीन होता है उसकी बातें हो रही होती हैं, यानी वही करबला के मौके का रोना धोना 10 मुहर्रम का, ठीक है। लेकिन वो तो 10 मुहर्रम में खाली रोते धोते हैं ना, बाकी साल क्या कर रहे होते हैं, बाकी साल यही गंग बला कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को साथ साथ रखने से बच्चे जो है ना वो दीन सीखते हैं, चाहे अच्छा वाला दीन सीखें चाहे बुरा वाला दीन सीखें, लेकिन सीखते तो है ना, ठीक है भाई। स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो वहां पे सीखते हैं ना, जो वहां पे जाकर के वक्त गुजार रहे होते हैं तो वहां पे सीखने को मिल रहा होता है ना, जो भी सीखने को मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है ना। अब अगर आप किसी को लेकर के ही ना जाए तो फिर कैसे सीखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों को शुरू से जो है ना वो मजालिस में जिसमें कि अल्लाह की बातें होती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है, दीन के बारे में बताया जाता है, अखलाकियात के बारे में बताया जाता है, ठीक है, हुकूक के बारे में बताया जाता है कि हमारे ऊपर किन किन हुकूक आते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला को क्या चीज पसंद है और अल्लाह ताला खुद कितने अच्छे हैं, अल्लाह ताला कितने प्यारे हैं, अल्लाह ताला कितने बड़े मोहसिन हैं, ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजालिस में बताई जा रही होती हैं, ठीक है। तो बच्चों को उनके अंदर बाकायदगी से जो है ना वो लेके आना चाहिए ताकि उनको ये इल्म हो। तो अब अगर उनको ये वाला इल्म होगा तो फिर साथ साथ ये भी तो इल्म होगा ना कि गुनाह तो लिखे नहीं जा रहे और जो है वो नेकियां भी लिखी नहीं जा रही, तो फिर करने का फायदा क्या। तो इस वजह से ये बात भी उनको समझानी होती है कि गुनाह लिखे तो नहीं जा रहे, लेकिन इंसान की अल्लाह ताला ने फितरत ऐसी बनाई है कि जब वो कोई काम करता है ना तभी उसको आदत पड़ती है वो काम करने की, ठीक है, और जो काम वो नहीं करता तो उसको आदत ही नहीं पड़ती वो काम करने की, ठीक है। तो अगर गुनाहों से, बेशक आपके गुनाह लिखे नहीं जा रहे, लेकिन गुनाहों से बचने की आदत पैदा करना ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आदत नहीं बनाई गुनाहों से बचने की और नेकी के काम करने की, तो जिस दिन आप बालिग होंगे तो उस दिन आपके लिए ना गुनाहों से बचना मुमकिन होगा और ना नेकियां करना मुमकिन होगा, क्योंकि आदत ही नहीं है आपको, ठीक है, ना गुनाहों से बचना मुमकिन होगा ना नेकियां करना मुमकिन होगा क्योंकि आपको तो आदत ही नहीं बनी। तो अब बालिग होने के बाद ये तो नहीं होता कि अब आपको टाइम दिया जा रहा है कि चलो अब आदत बनाना शुरू करो, ठीक है ना, उस वक्त फिर कोई बीच में गैप ईयर नहीं आता जिस तरह कॉलेजों में गैप ईयर होता है ना, तो अब ये बालिग होने के बाद कोई गैप ईयर नहीं आता कि अब इसके अंदर आप आदत बनाए, नहीं उसके वो तो फिर अब आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई ना, ठीक है, तो फिर आप जाहिर है गुनाह करेंगे और नेकियां आप नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यानी पिटाई आपकी उसी वक्त शुरू हो जाएगी गुनाह करने की वजह से, ठीक है। हाँ ये तो आदत वाली बात हो गई। फिर उसके ऊपर एक और भी किसी एक सवाल आया था कि हाँ सवाल क्या था लेकिन उसका जवाब याद रखा, कभी बड़े मजे की बात होती है कि जवाब याद रह जाता है सवाल याद नहीं रहता, तो अभी ऐसे ही हो रहा है कि सवाल याद नहीं है लेकिन जवाब याद है। तो जवाब जो भी था, मतलब सवाल जो भी था, जवाब ये था कि अभी एक तो आदत तो बन रही है ना, ठीक है, अच्छा हाँ सवाल भी चले याद आ गया, वो ये कि चले आदत बनना जो है वो ठीक है बड़ा जरूरी है, आप कहते हैं हाँ भाई सही है चले मान लिया हमने आपकी बात की आदत, लेकिन फिर भी इट डजेंट फील लाइक ए बिग इनफ मोटिवेशन, ठीक है, कि बस सिर्फ आदत बनाने के लिए आप नेकी का काम कर रहे हैं, यानी मिल तो कुछ नहीं रहा ना, तो गोया के आदत बनने के अलावा कुछ नहीं हाथ में आ रहा, ठीक है, कि नेकी करने से आदत बन रही है, लेकिन वो भाई इंसान की तो फितरत है और ये फितरत तो बच्चे के अंदर भी होती है कि रिवॉर्ड की बुनियाद पे आप काम करते हैं, ठीक है, या पनिशमेंट की बुनियाद पे आप गलत काम से बचते हैं, तो ये तो अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है, ठीक है। तो अगर किसी के जहन में ये बात आए कि यार ये आदत बनना जो है ना ये बिग इनफ मोटिवेशन नहीं है, तो अब क्या जरूरत है नेकी करने की, ठीक है, और क्या जरूरत है गुनाहों से बचने की, तो उसका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा जवाब जो है वो अल्लाह ताला ने दिल में डाला, बस दिल ही में डाला वरना मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। वो क्या कि हमने बच्चों को समझाया कि जिस तरह आप कभी होते हैं ना, अब ये माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात की वजह से बड़ा फायदा भी हो जाता है कभी, तो हम जो है वो एक दफा जा रहे थे हाईवे के ऊपर, हमने चढ़ना था, ठीक है, लेकिन हाईवे जो है ना वो बंद करी हुई थी फॉग की वजह से, ठीक है, फजल जी का जो जनाजा था तो आप लोगों को भी शायद उन दोनों में खबर पहुंची होगी कि जनाजा तो झंग शहर में था, लेकिन झंग में जो है वो तो ज्यादा लोग नहीं रहते और बहुत सारे लोग बाहर के मुल्कों से भी जो है वो जनाजे में शामिल होने के लिए लाहौर पहुंचा, कोई कोई इस्लामाबाद पहुंचा, कोई जो है वो दूसरे शहर में पहुंचा ट्रेन से, फिर वहां से जो है ना वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी ने हाईवे पे सफर करके फिर जाना था, लेकिन उन दिनों में बहुत ज्यादा ना फॉग होता है जिसकी वजह से वो हाईवे को बंद कर देते, ठीक ठीक है, क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी तकरीबन जीरो हो जाती है। अब इतनी कम विजिबिलिटी में जब गाड़ियां चलेंगी तो फिर एक दूसरे को टक्कर करेंगी, टक्कर मारेंगी, और इससे बहुत नुकसान होगा, गाड़ियों का भी नुकसान होगा, जानों का भी नुकसान हो सकता है। तो वो हाईवे को बंद ही कर देते। तो अब जो है ना वो 11 बजे हाईवे खोलते हैं। तो 11 बजे से पहले हाईवे बंद होती है, क्या मतलब? हाईवे पे चढ़ने के लिए जो रैंप होता है ना, वो छोटी सड़क जो कि छोटी सड़कों से हाईवे को कनेक्ट करती है ना, उसको अंग्रेजी में रैंप कहते हैं, चढ़ाई। वो चढ़ करके फिर हाईवे को कनेक्ट करती है। तो अब बहुत सारी गाड़ियां जो है ना वो हाईवे के रैंप पर चढ़ तो जाती हैं, ताकि जैसे ही ब्लॉकेट खुले वैसे ही वो हाईवे पे अपना सफर शुरू कर दे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो बहुत ट्रैफिक जमा हो जाता है, लेकिन आगे से हाईवे की एंट्रेंस बंद होती है। जैसे ही 11 बजते हैं वैसे ही वो ब्लॉक हटाते हैं, और सारी की सारी जो ट्रैफिक यहां पे रुकी होती है ना, वो सारी की सारी ट्रैफिक एकदम से हाईवे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इस मिसाल से फिर बच्चों को बात समझाई। तो दरअसल यही दिन थे जबकि ये सवाल आया भी था, तो इसी मिसाल से समझाई कि जब हम बच्चा जो होता है ना वो बालिग नहीं होता, तो बेशक उसके नामे आमाल के अंदर आमाल लिखे नहीं जा रहे होते, लेकिन जो वो नेकी का काम कर रहा होता है ना वो जाया नहीं हो रही होती, वो गोया के स्टैक अप हो रही होती है। जिस तरह से ट्रैफिक स्टैक अप हो रहा होता है ना, ठीक है, तो वो नेकियां जो होती हैं वो उसकी स्टैक अप हो रही होती हैं, और जैसे ही वो बालिग होता है वैसे ही फिर वो सारी की सारी नेकियां जो है ना वो उसके लिए, यानी उसके उसके फायदे के लिए बन जाए। अब हम उसको ये बेशक अगर ना भी कहें कि ऐसा नहीं होता कि वो सारी की सारी नेकियां जो आपकी स्टैकअप हो रही थी तो वो एकदम से लिख दी जाती हैं आपके नामे आमाल के अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो जो आपकी नेकियां आपने बालिग होने से पहले करी थी वो बिल्कुल जीरो हो गई, कोई फायदा ही नहीं हुआ उनका। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मिसाल के जरिए से ना बच्चों को बिल्कुल बात समझ में आ गई कि नेकियां करने का फायदा आदत बनने के लिए भी है, और ये भी कि ये जाया नहीं होंगी हमारी नेकियां, ठीक है, बल्कि जिस दिन बालिग होंगे उस दिन इन नेकियों का एक ऐसा गोया के ऐसा थ्रेश थ्रेश बनेगा, ऐसा ऐसा इसका वो जोर बनेगा कि आगे जो है ना वो हमारी जो नेकियों की हाईवे है वो एकदम से पॉपुलेटेड हो जाएगी, उसके ऊपर हमारी नेकियों की ट्रैफिक का रश लग जाएगा। ठीक है, तो एक नेकी भी जाया नहीं होगी। बहरहाल, तो ये तो बातें हो गई बलूगत की जिंदगी के बारे में। तो इसमें ना फिर जिस्म के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, जाहिर उसी की वजह से तो फिर इंसान जो है वो बच्चा जो है बालिग हो रहा होता है। तो ये दूसरा साइकिल 7 से 14 साल की उम्र का हो, ठीक है। देखिए ये बातें होती हैं जो बच्चों के सिखाने की होती हैं। माँ बाप परेशान भी बहुत होते हैं कि बच्चा है उसको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, और तो क्यों? अब या तो स्कूल भेजो और स्कूल में जो जो वो सिखाना चाहे वो आपके बच्चों को सिखाए। माँ को खुद नहीं पता होता कि बच्चों को क्या सिखाना और कितना सिखाना और कितना सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को गौर से सुनना चाहिए और उनके ऊपर थोड़ा सोचना भी चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे को जो है ना वो इस किस्म की नॉलेज की जरूरत है, तो क्या मैं ये नॉलेज जो है वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहरहाल, ये अभी इसका तफसील में नहीं जा रहे। दूसरा साइकिल मुकम्मल हुआ, फिर तीसरा साइकिल, ये 14 से 21 साल की उम्र का साइकिल। तो फरमाते हैं कि फिर जब तीसरा साइकिल आता है तो उस वक्त इंसान जिस्मानी तौर पर अपने जोबन पर होता है, ठीक है। हजरत जोबन का लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया करते थे, पीछे भी चांद के साइकिल्स के अंदर जब चांद जोबन पर होता है तो उसके तहत हमने आपको काफी तफसील बताई भी थी कि जोबन का मतलब क्या होता है। तो अब जो है ना इंसान भी जिस्मानी तौर पर अपने जोबन पर होता है, यानी फुली डेवलप्ड एक्साइटेड। तो जब 21 साल का नौजवान लड़का हो या लड़की हो तो ये फिजिकली अपनी बॉडी के एतबार से इसकी जो कशिश होगी वो भरपूर होगी, खूबसूरती भरपूर होगी, चेहरे के ऊपर एक जवानी की चमक होगी और एक हया होगी। वो तो अगर माहौल ने हया छोड़ी होगी तो हया भी होगी, वरना हया रुखसत हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो अच्छे माहौल में रहने वाले और बुरे माहौल को अवॉइड करने वाले होते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर बाकायदा हया भी होती है, ठीक है, वरना शैतान सबसे पहले हया के ऊपर हमला करता है और उसको वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो हजरत ने अच्छा गुमान रखते हुए फरमाया कि एक हया होगी। चुनाचे 21 साल में इंसान का जिस्म खूबसूरती के एतबार से अपने क्लाइमेक्स पर होता है, उरूज पर होता है। देखिए खूबसूरती जो है ना वो अल्लाह ताला ने पूरे इंसान के स्ट्रक्चर में बनाई है, ठीक है। ये जो है ना वो यानी कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इसके बारे में बताते हैं, तो जहन में आया तो वो आयत याद नहीं आ रही। अहसनुल खालिकीन, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, ठीक है। लेकिन वो तो फिर हर एक के लिए है ना कि भाई अल्लाह ताला ने जो चीज भी बनाई वो बेहतरीन बनाई, अल्लाह ताला बेहतरीन बनाने वाले हैं, ठीक है। सारे खालिकीन में से सबसे ज्यादा अहसन हसीन बनाने वाले हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात भी बनाया, तो बाकी मखलूकात से भी सबसे ज्यादा जो बेहतर साख अल्लाह ताला ने बनाई है वो इंसान की बनाई है, ठीक है। तो इंसान की जो हाथों की साख्त है, पैरों की साख्त है, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल परफेक्शन के हिसाब से, बिल्कुल परफेक्शन है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एक अलग किस्म की खूबसूरती जो होती है वो इंसान के चेहरे पर होती है, ठीक है। ये गोया के पूरे जो उसकी साख्त है, पूरा उसका वजूद है, उसकी खूबसूरती के अंदर से भी सबसे ज्यादा यूनिक खूबसूरती जो होती है वो उसके चेहरे के ऊपर होती है, ठीक है। वलकत खलकना इंसान फी अहसन तकवीन, हाँ ठीक है, हाँ यही वाली आयत थी, जज़ाकुमुल्लाह। वलकत खलकना इंसान फी अहसन तकवीन, सूरत 3 के, वो 3 व ज़ैतून तूर सीनीन है। तो इंसान को बेहतरीन तकवीन पर बनाया अल्लाह ताला ने, यानी पूरी की पूरी इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो बेहतरीन, ठीक है। और उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने जो चेहरा बनाया वो ऐसा बनाया कि ये उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि हर इंसान का चेहरा जो है वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, हत्ता के आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनके चेहरे भी एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ होते हैं कि माँ बाप को पहचान आसानी से हो जाती है, ठीक है। और दूसरा बंदा भी जरा गौर से देखे तो फिर आइडेंटिकल ट्विंस भी उनके दरमियान भी फर्क नजर आ जाता है, लेकिन एक दूर से देखने में और हल्का देखने पे समझ में नहीं आता कि इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। उदरतन आप ठीक है, तो अल्लाह ताला ने चेहरे की खूबसूरती यूनिक बनाई है, ठीक है। तो अब जैसे अल्लाह ताला की हिकमत है और जैसे अल्लाह ताला का इल्म है, तो उसके हिसाब से फिर अल्लाह ताला ने चेहरे के भी पर्दे का औरतों को हुक्म दिया, ठीक है, क्योंकि चेहरा जो है ना ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए चेहरा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जैसे जैसे जो है वो तदरीजन तरक्की दी, तो उसके हिसाब से जो है ना फिर ये रिक्वायरमेंट बनी अल्लाह ताला की हिकमत में कि 5 हिजरी का वो वक्त था कि जिसके अंदर चेहरे का पर्दा भी अल्लाह ताला ने फराइज में दाखिल कर दिया, उससे पहले चेहरे का पर्दा फराइज में दाखिल नहीं था, ठीक है। तो कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया कि इन आयात में जिस हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है ये इसको कैसे करना है, ठीक है ना। बिल्कुल जो है वो पर्दा डाल दिया अपने घर के अंदर, जो हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर था, वो हुजरा था, तो बैठी हुई थी दूसरी तरफ, ठीक है, और यहाँ पे मर्द बैठे हुए थे और दरमियान में कोई पर्दा नहीं था, लेकिन जैसे ही कुरान मजीद की ये वाली आयत नाज़िल हुई नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा पर्दा डाल दिया, ठीक है। हया तो पहले भी थी और पहले भी जो बैठी हुई थी ना वो भी चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी, पहले भी ज़ैनब रज़ी अन्हा जो बैठी थी वो इस तरफ चेहरा करके नहीं बैठी हुई थी मर्दों की तरफ, बल्कि वो दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बावजूद उठ करके बाकायदा दरमियान में एक रुकावट डाल दी, तो करके बता दिए कभी ये मतलब है इसका, पर्दे का मतलब। ठीक है, जिब्राइल अलैहि सलाम साथ साथ होते थे ना, बता रहे होते थे कि ये आयत आई है, अब इसका मतलब क्या है, करना क्या है इसके ऊपर, ठीक है, तो नबी अलैहि सलाम के मुताबिक अमल भी कर रहे होते थे। बहरहाल तो ये जो है फिर बुलूगत की उम्र होती है, बुलूगत में तो वो पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से जो है वो चुनाचे 21 साल में इंसान का जिस्म खूबसूरती के एतबार से अपने क्लाइमेक्स पर होता है। ठीक है, तो कोई ये ना कहे कि अच्छा फलाना शख्स जो है वो तो चेहरा उसका कोई हसीन नहीं है, भाई आपको हसीन नहीं लगता ना, लेकिन उसके परवरदिगार ने तो उसको हसीन बनाया है। ठीक है, और वैसे भी हुस्न की बात जो है वो सिर्फ चेहरे की नहीं हो रही, बल्कि पूरा का पूरा वजूद ही हसीन अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, इंसान का जिस्म खूबसूरती के एतबार से अपने क्लाइमेक्स पर होता है। अच्छा क्या लिखा है उन्होंने कि इसीलिए चेहरे को देखकर अखलाक की दुआ सिखाई गई, चेहरे को देखकर अखलाक की दुआ सिखाई गई, सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, कि अखलाक में इंसान के बहुत हसीन, जैसे कि चेहरा सबसे एहसन होता है। हाँ, कि जैसे आईने को देख करके जो जो दुआ है, आईने देखने वाली दुआ क्या थी वो, लोग कि अल्लाह आप मेरे अखलाक को भी ऐसे ही हसीन बना दीजिए जैसे कि आपने मेरे चेहरे को हसीन बनाया। एक्चुअली इसको चेहरे एक लफ्ज नहीं, अगर किसी को वो दुआ याद आ रही हो उस वक्त, वो यहाँ पे लिखने तो बात ज्यादा समझ में आ रही है, अल्फाज में आ रहे। अच्छा चौथा साइकिल यानी 21 साल के बाद जो चौथा साइकिल होता है वो 21 से लेकर के 28 साल की उम्र तक का साइकिल होता है। तो फरमाया कि फिर जब एक साइकिल और गुजरता है तो 28 साल की उम्र हो जाती है, यानी 21 से 28 साल के जो 7 साल गुजर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइंस ने साबित किया है कि इसमें इंसान का कद बढ़ना खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब ये कि बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हत्ता के उस मकाम तक पहुंच जाता है कि इसके आगे मजीद नहीं बढ़ना। ठीक है, तो फुल हो जाता है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, हड्डियों के जो एंड्स होते हैं, सिरे होते हैं, वो फाइनल हो जाते हैं। 28 साल के बाद इंसान का कद नहीं बढ़ता है। ठीक है, यानी कद 28 साल तक बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बस अब बालिग होने के बाद बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, या और भी ज्यादा ना कि और बच्चियों को खास तौर पे कि अच्छा अगर बच्ची जल्दी बालिग हो गई तो वो छोटी रह जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। इवन डॉक्टर्स से भी बात हुई है और सामने देखा हुआ भी मामला है कि भाई बालिग होने के बाद बच्चों का कद बढ़ा है। ठीक है, तो हाँ जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता हसन तखल्की फहसन खुल्की। ठीक है, तो इसमें वैसे वजही का तो लफ्ज है ही नहीं, हसन ता वजही, कि जैसे आपने मेरे चेहरे को हसीन बनाया तो आप मेरे खुलक को यानी मेरे अखलाक को भी हसीन बना दीजिए, नहीं बल्कि इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखाई आईना देखने वाली, अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की, आपने मेरे पूरे के पूरे खल्क को जैसे खूबसूरत बनाया वैसे आप मेरे अखलाक को, मेरे मैनरिज्म को भी खूबसूरत बना दीजिए। ठीक है, क्या माशाल्लाह दुआएं सिखाई नबी अलैहिस्सलाम ने। तो इंसान का ना चाहे उसका चेहरा जो है वो किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक लोगों के नजदीक खूबसूरत ना भी हो, ठीक है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो खल्क है, जो उसका पूरी तख्लीक है उसकी, वो तो खूबसूरत है ही, क्योंकि है तो वो इंसान ही ना, अशरफुल मखलूकात ही है ना। ठीक है, और बाकी है कि खूबसूरती की तारीफात तो फिर हर एक की अपनी अपनी होती है। वो बादशाह वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि बादशाह ने जो है ना वो अपने वजीर से कहा कि कल तुम जो सबसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा है ना उसको लेकर के आना यहाँ पे मेरे दरबार में, हमारे मुल्क पे सबसे खूबसूरत बच्चा उसको तुम अपने दरबार में मेरे दरबार में लेकर के आना। तो अगले दिन जो है ना वो वजीर साहब जो थे वो अपने बेटे को लेकर के आ गए। ठीक है, जो कि कोई खूबसूरत नहीं था उनके हिसाब से, बादशाह के हिसाब से। तो बादशाह सलामत ने कहा मैंने तो तुमसे कहा था कि सबसे ज्यादा हसीन बच्चे को लेकर के आना जो हमारे मुल्क में हो, ठीक है, तो तुम जो है वो अपने बेटों को लेकर के आ गए। तो वजीर साहब ने जवाब दिया बादशाह सलामत अगर आप मेरी नजर से मेरे बेटे को देखें ना तो इससे ज्यादा हसीन कोई है ही नहीं बच्चा। ठीक है, तो ब्यूटी को तो यही मामला होता है कि भाई किसी के नजदीक कोई चीज ब्यूटीफुल होती है, किसी के नजदीक कोई चीज ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, और जाहिर है तो ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए किसी एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाए कि जी ये चीज ब्यूटीफुल है, तो वो चंद लोगों के नजदीक होगी, लेकिन हर एक के नजदीक तो वो भी ब्यूटीफुल नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जब चेहरे की ब्यूटी है ना, ये तो फिर अपना अपना होता है मामला। तो अल्लाह ताला ने तखलीक जो हमारी बनाई है, हम तो अल्लाह की तरफ से जिस चीज को हसीन कहा गया है, हम तो उसी को हसीन कहेंगे। और वो क्या है? पूरा खल्क हसीन। ठीक है, अल्लाह की डेफिनेशन, असल डेफिनेशन होती है कि हम जैसों की डेफिनेशन असल डेफिनेशन होती है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो ये हो गया कि भाई इंसान की जो है ना वो कद इस एज के बाद नहीं बढ़ता, इसी वजह से जो माशाल्लाह कपड़ों को अच्छे से इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं तो उनके जो है ना वो कपड़े फिर चलते रहते हैं माशाल्लाह, क्योंकि साइज चेंज नहीं हो रहा ना। तो अब जो है वो 20 साल पुराना भी कपड़ा चल रहा है। मर्दों में तो ये आम तौर पे देखा गया है कि 20 20 30 30 साल के कपड़े जो होते हैं उनके अगर फटके जब तक खत्म ना हो जाए उस वक्त वो उनको चला रहे होते हैं, क्योंकि साइज बदल नहीं रहा। अच्छा, ये हो गया चौथा साइकिल 21 से 28 ईयर्स का। अब पांचवा साइकिल जो है वो फिर 28 से 35 साल का साइकिल, ये भी नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो हजरत ने फरमाया कि फिर जब एक साइकिल और होता है तो 35 साल की उम्र हो जाती है उसके अंदर, यानी अब आप 5th साइकिल के अंदर लग गए हैं। तो ये भरपूर जवानी की उम्र है, भरपूर जवानी। ठीक है, यानी जवानी अपने जोबन पर होती है। ठीक है, अब ये अगरचे के हजरत ने 14 से 21 साल में जोबन का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन वहां पर सिर्फ जिस्म की बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन इंसान जो है वो सिर्फ जिस्म तो नहीं है ना, इंसान तो जिस्म के साथ साथ रूह का भी मजमुआ है। ठीक है, तो भरपूर जो उसकी उम्र होगी वो सिर्फ जिस्मानी एतबार से भरपूर हो जाने से वो भरपूर नहीं होगी, बल्कि जब तक रूहानी एतबार से भी वो भरपूर ना हो जाए तो उस वक्त तक वो सही मानों में भरपूर नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर जिस उम्र के साइकिल की बात हो रही है ना, ये गोया के उसका रूहानी एतबार से। अब लेकिन रूहानी का लफ्ज यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है ये दीनी जरूरी नहीं है, क्योंकि काफिर जो होता है वो तो दीनी तौर पे थोड़ी भरपूर हो रहा होता है 35 साल की उम्र में आकर के। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इंटेलेक्चुअली या साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकली प्लस फिजिकली ये अपनी भरपूर मैक्स पे पहुंच जाता है इंसान। ठीक है, गालिबन यही वजह है के हदीस मुबारक में बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि जन्नत में जो लोग दाखिल होंगे तो वो 30 से 33 साल की उम्र के होंगे, यानी जो भी उम्र में वो इस दुनिया से गए ना, तो जन्नत में उनके दाखले के वक्त जो उनकी उनकी उनको बना दिया जाएगा वो वैसा बना दिया जाएगा जैसे कि वो अपनी 30s में थे, अर्ली 30s में, क्योंकि हदीस के अंदर बाकायदा 30 से लेके 33 साल, 30 30, यानी 32 33। ठीक है, तो इस हालत में वो जन्नत में दाखिल होंगे। तो अब 90 साल का बूढ़ा दुनिया से गया, बुढ़िया गई, लेकिन जन्नत में वो जैसे एक नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा लतीफा भी किया सहाबा के साथ, एक बुढ़िया आई और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं जन्नत में जाऊंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएंगी। ठीक है, अब वो जो है वो परेशान होंगी, अच्छा मैं तो बुढ़िया हूं तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन ये भी समझा दिया, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने सच ही बोला था कि वाकई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएंगी, मतलब ये था कि तुम जवान करके जन्नत में दाखिल की जाओगी, इस हालत में तुम्हें जन्नत में नहीं दाखिल किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं तो हमने एक भी नहीं देखा, एक देख लेते हैं कि जवानी कब स्टार्ट होती है, एक लड़की की जवानी कब स्टार्ट होती है। भाई जो बलूगत है ना उसी को जवानी कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसी वक्त स्टार्ट होती है। सही है, अच्छा, यानी स्टार्ट तो वही होता है ना। अब जो है वो फिजिकल जवानी जो है वो अपने जौबन पर 14 से 21 के साइकिल के दौरान या स्टेज के दौरान आती है, और फिजिकल के साथ साथ यानी ये अब जौबन पर रहती है फिजिकल जवानी। ठीक है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल जवानी है या साइकोलॉजिकल जवानी है वो अपने मैक्स पर कब आती है, वो इस पांचवें वाले साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, अब बलूवत के जो जो मसाइल है ना, वो बाकायदा शरीयत ने डिफाइन किए हैं। वो फिर आपको अपनी वालदा से पूछना चाहिए, या कोई आलमा है, कोई दीन का सही इल्म शऊर रखने वाली है, तो सब उनसे पूछ ली। ठीक है, तो ये उम्र तो कोई उसकी फिक्स नहीं होती, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11, 12, 13, 14 भी हो सकती है। अच्छा, पांचवा साइकिल हो गया, कि फिर जब एक साइकिल और होता है तो 35 साल की उम्र हो जाती है। ये भरपूर जवानी की उम्र है। 35 साल का जवान जिनसी एतबार से भी भरपूर कुवत रखता है और अपने दिमागी एतबार से भी भरपूर कुवत रखता है। ठीक है, तो हर तरीके से वो मैक्स की हालत में होता है इस उम्र के अंदर। इसीलिए आम तौर पर नौजवान 35 साल में अपनी जॉब्स में भी पक्के हो जाते हैं, अपना कारोबार भी कर लेते हैं और खूब अच्छा कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 35 ईयर्स तक पहुंच के, यानी गोया के 28 to 35, ये वो टाइम होता है कि जिसके अंदर पे ना, चूंकि आप ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इंटेलेक्चुअली भी साइकोलॉजिकली भी फुल फ्लेज्ड इंसान बन चुके होते हैं, तो ये बहुत असिस्ट करती है इस बात में कि आप जो है ना वो, यानी इवन बिजनेस के अंदर भी अच्छे हो जाते हैं, या आप जो भी एम्प्लॉयमेंट है आपकी उसमें भी अच्छे हो जाते हैं। अब खवातीन के लिए इसके अंदर क्या रेलेवेंस है, कि गोया कि वो अपने घरेलू मामलात के अंदर भी जो है ना वो अब इस्टैब्लिश्ड हो जाना। ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है उसके तहत तो फिर शादी का हो जाना, छोटे बच्चों का जो है वो दौर वो अब तक जो है वो गुजर चुका होता है, और बच्चे भी जो है ना वो तकरीबन बड़े हो चुके होते हैं। किसी, यानी बड़े से मुराद ये कि अंडर 10 बच्चे जो है वो कम होते हैं या नहीं होते हैं, अब अबव 10 होते हैं। ठीक है, तो अबव 10 जो बच्चे होते हैं ना, तो फिर उनके साथ माँ की जिंदगी एक बेहतर स्टेबल हालत के अंदर आ जाती है। ठीक है, या ये कि अगर अभी भी कोई अंडर 10 बच्चा है, तो भाई ओवर 10 बच्चे भी साथ साथ होते हैं, तो वो ओवर 10 बच्चे भी जो होते हैं ना, वो फिर माँ की मदद कर रहे होते हैं, और जो अंडर 10 बच्चे होते हैं उनको संभालने में माँ के साथ होते हैं, तो फिर माँ की भी जिंदगी, घरेलू जिंदगी भी जो होती है ना, वो भी अच्छी खासी स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, इसी एज के अंदर फिर जो लोग अपनी कमाई के अंदर भी अल्लाह ताला ने उनका जितना रिस्क लिखा होता है, तो उस हिसाब से मतलब किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, तो जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और मिलियनियर्स बनते हैं, तो वो भी जो है ना वो अराउंड इसी एज में जाकर के वो बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये, आई डोंट नो, मुझे इन चीजों का ज्यादा पता नहीं होता, ये बिल गेट्स और एलोन मस्क और ये इस किस्म के जो लोग हैं, तो जिन्होंने अपनी कंपनियां वगैरह इस्टेब्लिश करी, तो इनकी कंपनियां जो फिर बूम के ऊपर जो पहुंची हैं, तो उस वक्त इन लोगों की एज भी अराउंड इतनी ही थी। ठीक है, दीनी एतबार से देखा जाए तो यही वो वक्त होता है कि जिसके अंदर दीनी तौर पर भी ना वो बंदा जो होता है वो फुली तौर पर मुतहर्रक मुतहर्रिक होता है। ओके, इसी उम्र को जवानी की उम्र कहते हैं। सही है, तो इसमें फिर जाकर के ना बंदा जाकर के स्टैब्लिश होता है। इससे पहले ना तो औरत स्टैब्लिश होती है और ना जो है वो मर्द स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो इससे पहले का जो टाइम होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रगलिंग का टाइम। ठीक है, ये जो चौथा साइकिल था ना, 21 to 28, ये स्ट्रगलिंग टाइम होता है, ये चक्की पीसने वाला टाइम होता है। ठीक है, अब वो हर एक बंदे की चक्की अलग अलग, जैसे हमारे हजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हर एक ने अपनी चक्की पीसनी होती है, लेकिन हर एक की चक्की अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिसके अल्लाह ताला ने किस्मत में जो चक्की लिखी है उसने वो वाली चक्की पीसनी होती है। ठीक है, तो ये चक्की पीसने का टाइम जो है वो 21 to 28 ईयर्स होता है, और ये सब पीसते हैं। अब पिछले दिनों चंद लोगों के साथ जो है वो ये इसके ऊपर काफी बातचीत हुई कि लड़कों के करियर्स की बात ना, कि भाई कौन सा वाला करियर चूज करना है, कौन सा वाला करियर चूज करना चाहिए, तो उसमें फिर ये बात बहुत हुई थी कि भाई वो किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहता हूँ। तो उनको फिर यही समझाया कि आलम दीन आप जरूर बनाएं, लेकिन जिस तरह बनना चाहिए वैसे बनाएं, ठीक है ना? क्योंकि आलम दीन बनना ये भी एक करियर है, आलम दीन ये प्रॉपर करियर है, जिस तरह से के मेडिकल डॉक्टर एक प्रॉपर करियर है, इंजीनियर ये प्रॉपर करियर है। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब वो नहीं होता जो गाड़ी के पीछे लगाया जाता है, जिसके ऊपर आप कोई सामान रख देते हैं तो उसको करियर कह देते हैं। नहीं, यहाँ पे करियर का मतलब है कि वो लाइन के जिसके जरिए से आपने कमाना है, ठीक है, आपने कमाना है, मतलब कि अगर आप अपनी तरफ से देखें तो ये कहेंगे कि हमने इस लाइन के जरिए से कमाना, ठीक है। अगर आप अल्लाह की तरफ से देखेंगे तो इसको ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उस लाइन के जरिए से आपको रिस्क देंगे, ठीक है। तो वो लाइन क्या होती है? वो कैरियर वाली लाइन होती है, ठीक है। अब हम जो है वो आपको इसलिए नहीं बता रहे ये सारी बातें कि अब आप जो है वो कैरियर ओरिएंटेड बन जाए। ख्वातीन को अल्लाह ताला ने ये वाला कैरियर नहीं बनाया, ठीक है। बाकी तो काफिरों ने और शैतानों ने तो बना दिया, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो वाली बात तो समझा रहे ना, वो वाली बात ही सिखाने वाले, तो हम आपको इस वजह से नहीं बता रहे ये सारी बातें। अब आप करियर ओरिएंटेड हो जाएगा कि मुझे भी ये बनना है, मुझे भी वो बनना है, मुझे भी पायलट बनना है, मुझे नासा का साइंटिस्ट बनना है, और मुझे इसलिए नहीं बता रहे आपको बातें, इसलिए बता रहे हैं कि आपका बच्चा भी अगर आलिम दीन बनना चाहे, ठीक है, तो आलिम दीन जो है ना ये इस मखमसे से बाहर निकलना है कि आलिम दीन बनने का मतलब ये है कि मन्नो सलवा के लिए काम करना है, ठीक है, कि बस आसमान से मन्नो सलवा नाजिल होगा तो मेरा बच्चा अगर आलिम दीन बन गया तो वो आसमान से डायरेक्ट जो मन्नो सलवा नाजिल होगा वो वही खाएगा, उसके अलावा हर चीज उसके ऊपर हराम है। ये अनफॉर्चुनेटली शैतान ने आम कर दिया इस वाली बात को हमारे मुआशरे के अंदर, शैतान ने किया है सिर्फ, है ना, और किसी ने नहीं किया। तो वो ये है कि मैनी बेसिकली इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा था, आलम दीन का मतलब ये है कि खाने को नहीं मिलेगा इसको, ठीक है ना, यानी जो आम इंसान खाते हैं ना वो इसके ऊपर हराम है, वो ये नहीं खा सकता, बस डायरेक्ट ऊपर से नाजिल होगा वो इसके लिए हलाल है, और अगर नाजिल नहीं हुआ तो ये मर जाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि ऊपर से मन्नो सलवा नाजिल नहीं हो रहा तो अब ये मर जाएगा, जाहिर सी बात है, बाकी चीजें तो हराम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना आलम दीन के ऊपर मन्नो सलवा नाजिल होगा और ना जो है दुनिया के माल दौलत उसके ऊपर हराम है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ठीक है। तो आलम दीन ये भी एक कैरियर है, यानी कमाने का रास्ता है, ये कमाने का रास्ता है, जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर और पायलट और फौजी और जो भी हैं प्रोफेशंस, लायर लॉयर, ये कमाने के रास्ते हैं ना, उसी तरीके से आलिम दीन भी कमाने का रास्ता है, ठीक है, ये कमाने का रास्ता है। हराम कमाना ना डॉक्टर के लिए जायज है, ना इंजीनियर के लिए जायज है, ना फौजी के लिए जायज है, ना लायर के लिए जायज है, लॉयर, ठीक है, तो आलम दीन के लिए भी जायज नहीं है भाई, हराम कमाना तो किसी के लिए भी जायज नहीं है, लेकिन हलाल कमाना ये तो किसी के लिए भी नाजायज नहीं है, तो आलम दीन के लिए कहां से नाजायज बन गया हलाल कमाना, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं, आलम दीन का तो कमाई नहीं, बस भाई होता क्या है, होता यह है कि हर बंदे को वो जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी कैरियर में हो, उसको जो है वो शुरू में स्ट्रगल करना होता है, करना होता है कि नहीं करना होता, डॉक्टर करता है कि नहीं करता, हमारे भाई डॉक्टर हमने तो अपनी आंखों से देखा, अपने घर में देखा, लेकिन हमारे कितने जानने वाले इंजीनियर्स हमने अपनी आंखों से देखा, ठीक है, तो इंजीनियर्स ने भी स्ट्रगल किया, डॉक्टर्स ने भी स्ट्रगल किया, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बड़े बड़े हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, लेकिन कराची की बसों में जाते थे लंबा सफर करके, खड़े होकर के कराची की बस में, जिसको कहते हैं कराची की बसों में धक्का खा के जाना, ठीक है ना, तो वो भी कराची की बसों में जाते थे, हम जिस तरह से जाते थे, ठीक है ना। तो भाई स्ट्रगल पीरियड तो वो हर एक ने गुजारा है। तो एक आलिम दीन को क्यों समझते हैं सारे के लोग कि नहीं इसको स्ट्रगल पीरियड नहीं गुजारना चाहिए, इसको जो है ना बस इधर आलिम बना उधर ही जो है वो मन्नो सलवा ऊपर से नाजिल हो जाना चाहिए इसके ऊपर, और अगर मन्नो सलवा नाजिल नहीं हुआ तो अब तो ये मर जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाकी चीज इसके ऊपर हराम है। नहीं है भाई हराम, कोई चीज इसके ऊपर हराम नहीं है, सिर्फ हराम हराम है इसके ऊपर, बाकी कोई चीज हराम नहीं है, ठीक है। तो भाई स्ट्रगल का पीरियड हर एक ने गुजारना होता है, उसी तरीके से आलिमुद्दीन ने भी गुजारना होता है। और जिस तरीके से डॉक्टर को अपना काम सीखना होता है और सही से अपना काम करना होता है ना, सीख करके फिर सही से काम करना होता है डॉक्टर को, वो उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दे, या वो जो है वो कहे कि नहीं मुझे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल करने की जरूरत नहीं है, बस लोग मुझे आके तनख्वाह दे दिया करें, तो आपके क्या ख्याल है उस डॉक्टर को जो है वो उसका स्ट्रगल पीरियड खत्म ही नहीं होगा फिर, अगर वो इल्म सही से हासिल नहीं करेगा अपनी डॉक्टरी का और सही से जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो उसकी क्लिनिक भी नहीं चलेगी, उसकी जो है वो अपनी डॉक्टरी का प्रोफेशन भी नहीं चलेगा। यही मामला जो है वो आलिम दीन के साथ भी है, ठीक है। अब वो कहानियां बनाई हुई हमने एक से एक है ना कि नहीं इधर तो नहीं मिलता उधर मिलता है, उधर नहीं मिलता इधर मिलता है, भाई काम करो सही तरीके से भाई, सब हर जगह मिलता है, ठीक है। अल्लाह ताला, और कोई नहीं मिला ना कि बस क्या कहते हैं, हर कंपनी अपने एम्प्लॉयर को जो है वो अच्छे से अच्छा रिस्क देती है, और ये बेचारा जो अल्लाह का काम कर रहा है इसको कुछ नहीं मिलता, तो ये इल्जाम तो किसके ऊपर आता है? ये तो अल्लाह पे इल्जाम आता है ना कि जी इसको इसको अल्लाह ही एक है जिसको के जिसके पास कुछ है ही नहीं, पल्ले कुछ नऊज बिल्ला अल्लाह के पल्ले कुछ नहीं है, तो जो अल्लाह के कुरान की खिदमत करे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करे, उलूम की खिदमत करे, अल्लाह ताला उनको फारिग उसको कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। अल्लाह ताला उसको सबसे ज्यादा देते हैं, ठीक है ना, जो किसी दूसरे को नहीं मिलता अल्लाह ताला उसको वो भी देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये स्ट्रगल का पीरियड होता है, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे कि स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है वो शुरू में आता है, फिर उसके बाद जब बंदा नेक्स्ट साइकिल में दाखिल हो जाता है 28 to 35 वाला जो साइकिल हो जाता है, इसके अंदर फिर वो एस्टैब्लिशमेंट वाला पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक है। यही मामला हर प्रोफेशन में भी होता है, यही मामला घर की औरत का भी होता है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर काम सही से कर लेता है वो नेक्स्ट साइकिल के अंदर जाके एस्टैब्लिश हो जाता है, और जो स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर काम सही से नहीं करता वो नेक्स्ट साइकिल में जाकर के भी एस्टैब्लिश नहीं होता, यही घर की औरत का भी मामला है। जब वो उसका अपना स्ट्रगलिंग पीरियड था, अब उसके अंदर अगर उसने कुछ सीख के नहीं दिया, राइट, उसने अगर अपना काम सही से करके नहीं दिया तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट वाले साइकिल के अंदर कैसे दाखिल होगी, एस्टैब्लिशमेंट वाले स्टेज के अंदर कैसे दाखिल होगी, ठीक है। इज इट मेकिंग सेंस और इट्स नॉट मेकिंग सेंस? जी तुम बता रहे, तो हम क्लास खत्म कर देते हैं, हमें काफी टाइम हो गया आज तो, आदत के साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है जी। इंशाल्लाह बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं भी आई तो अल्लाह ताला ने रिकॉर्डिंग का इंतजाम करवाया हुआ है, उसको दोबारा से भी सुन सकते हैं, और तकरार का भी इंतजाम अल्लाह ताला ने करवा के रखा हुआ है, उसको भी जो है वो ज्वाइन कर लें, तो फिर अल इल्मु यजीदु बितकरार के उसूल के तहत इल्म जो है वो समझ में भी आ जाता है और इंसान का इल्म बढ़ता भी है, अमल की भी तौफीक अल्लाह ताला ता फरमा देते हैं। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।